फिर आप देखिए कि तस्बीह की दो किस्में, तो यहाँ हम दो किस्में देख लेते हैं। एक है तस्बीह इख्तियारी, ये तस्बीह तो फरिश्ते और मोमिन जिन्नो इंस के लिए मखसूस है, यानी मर्जी है तो करो, मर्जी है तो ना करो। आपको अल्लाह के नबी ने सिखा दिया हर नमाज के बाद 33 33 और 34 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर करना। अब आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई मजबूर नहीं करेगा। लेकिन एक होती है तस्बीह इज़तिरारी, बाउंडेड, मजबूर किया गया होता है वो। वो क्या है, कायनात की हर शय हम्द के साथ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, मगर तस्बीह तकवीनी को लोग नहीं सुन सकते। यानी आप यहाँ बैठ कर सुभान अल्लाह कहेंगे तो जो बैठा सुन रहा है वो सुनेगा, लेकिन कायनात, ये सूरज चाँद सितारे इवन ये हवा, बल्कि इतने कसीर में मैंने पढ़ा था कि दरवाज़ा खुलते हुए जो चरचराहट होती है वो उस दरवाज़े की तस्बीह होती है। और वो वाक़या भी आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी जब मदीना में आए तो एक दरख्त का सहारा लेकर आप खुतबा दिया करते थे। बाद में एक औरत अपने बेटे के ज़रिए से मिंबर बनवा कर मस्जिद नबवी में नसब करवा देती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब आप खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो उस तने में से बच्चे की तरह रोने की आवाज़ें आने लगी। तो ये चीज़ों में भी असर होते हैं। और सूरत नूर 41 में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तरअन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ातिन कुल्लुन कद अलिमा सलातहू व तस्बीहहू। यहाँ तस्बीह और सलात के बीच में वाव है, यानी गोया के परिंदों का उड़ना चहचहाना और ये सब कुछ भी उनकी इबादत की एक किस्म है। फिर आप देखिए कि तस्बीह क्यों करें, वजह तस्बीह से क़ुर्बे इलाही हासिल होगा। हमें जिसके करीब होना होता है ना, हम उसके गुनगाना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप अल्लाह का क़ुर्ब पाते हैं तो फिर आप के दिल में क्या बातें होती हैं, आप सिर्फ उसी से मांगते हैं। और वाकई आप अल्लाह के करीबियों में से हो जाइए, आपके इख्तियार में कुछ नहीं लेकिन आप अल्लाह से मांग लेंगे और फिर आप मांगेंगे तो वो ज़रूर देता है, इल्ला माशा, जो वो चाहे। फिर इसी तरह से इस्तग़फ़ार करेंगे तो वो आपको माफ़ कर देगा, तौबा करेंगे तो वो कबूल करेगा, उससे रिस्क मांगेंगे तो रोज़ी देगा, मदद चाहेंगे तो मदद देगा, शुक्र करेंगे तो वो और देगा। क्योंकि वाइस्ताज़ना रब्बुकुम लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, सूरत इब्राहिम आयत 7 में अल्लाह ताला ने इस बात को खोल कर रख दिया हम सब के सामने। तो क्या सीखा, कि हमने भी कसरत से तस्बीह करनी है। अगला टॉपिक है अल्लाह से राज़ी रहो, कैसे, रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनन और व बि मोहम्मदिन नबीयन। अल्लाह को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानिए। इसके लवाजिम, लवाजिम कहते हैं मस्ट, लाजमी से, यानी जिसका ये अकीदा हो उसके लिए लाजिम है कि हम अल्लाह के अहकाम, उसकी क़ज़ा व कदर और अच्छी बुरी तकदीर से राज़ी रहें। क़ज़ा व कदर में ये इंतखाब कि आपकी ख्वाहिशात और रग़बात के मुताबिक हो तो माने और आपकी मुराद व रुझान के ख़िलाफ़ हो तो ना माने, यानी अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, सीधी सी बात है। ये दुरुस्त नहीं है कि यानी अल्लाह को नाराज़ करके बंदा ख़ुद को या दूसरों को खुश करे, और ये बंदे की शान के ख़िलाफ़ है। जो लोग आसानी में रब से राज़ी और मुसीबत में नाराज़ होते हैं, नेमत में इतात गुजार और आफत में नाफरमानी करते हैं, इसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इन्हें खैर पहुँचे तो मुतमईन हो जाते हैं, आजमाइश लाहक हो तो मुंह फेर लेते हैं, वो दुनिया और आखरत के खसारे में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, किस तरीके से सूरत अलम्बिया में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की बात पेश कर दी। तो आजमाइशों के अंदर अपने आप को जमा लीजिए, अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहेगा। फिर बाज़रा भी मुसलमान होते थे, जब बारिश होती बकरियां दूध ज़्यादा देती, नबातात उगती तो कहते ये तो अच्छा दीन है, और फरमाबरदारी और इताअत करने लगते। जब दूसरी सूरत होती कि कहत पड़ता, सूखा जाता, माल कम होते, चरागाह की किल्लत होती तो एड़ियों के बल फिर जाते और दीन को छोड़ बैठते। इनका दीन ख्वाहिशात का दीन था। आज हम भी तो ये कहते हैं अगर खैर मिलती है दीन पे जाने में तो ले लो, और अगर ज़रा सी आजमाइश, ज़रा किसी ने कोई नाक भूं भी चढ़ाई तो हम कहते हैं घर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं दीन के बारे में इतना आगे जाने की। इसके बरक्स अहले ईमान, यानी इनके बरक्स साहिब ईमान वो थे जो बाहर सूरत राजी थे, रादिया तुम मर्दी या कौन है, रदी अल्लाह अन्हुम, यानी सहाबे कराम। इन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी मतलूब थी, बस इसका फजल चाहते थे। बकौल शायर, ए अल्लाह हमने तुझे रब व खालिक माना है। हम भी खुद से पूछे मेरा दिल ये गवाही देता। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और हिदायत तस्लीम की है। कौन सा नूर? जिसकी रोशनी में हिदायत के रास्ते पे चलते जाएं। तो आप नूरे हिदायत थे, नूरे मुजस्सम नहीं। हमें परवाह नहीं कि इस्लाम की रोशनी में ज़िंदगी मिले या दुश्मनों से मुकाबले में मौत आ जाए, यानी फतह हो कि शिकस्त, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो इसकी बड़ी खुशी है कि हम अपने नबी के दीन पर हैं। और शायर कहते हैं कि अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मुराद तो सहाबा कराम है ना, जो बज़ाहिर बंदगी का रास्ता अपनाते हैं, मिल्लत इस्लाम की खिदमत का दम भरते हैं, लेकिन इसके तकाज़ों और मुतालबात को पूरा नहीं करते और भागते हैं। वो इस लायक हैं कि इनको हमेशा की जिल्लत और अबदी खसारा लाहक हो। सूरत अल आराफ आयत नंबर 175 है। वो शख्स जिसकी बड़ी बुरी मिसाल है, कमसल अलकल्ब, कुत्ते की तरह ज़ुबान लटकाता ही रह गया और हिदायत पाने के बावजूद भी गुमराह हो गया। और अगर अल्लाह इनमें कोई खैर देखता तो इनको ज़रूर सुनवा देता, और अगर इन्हें सुना देता तो वो पुश्त फेर कर भाग जाते। ये सूरत अनफाल की आयत नंबर 23 है। यानी पता क्या चला कि बार बार इल्म और दीन होने के बावजूद भी बंदा भटक जाता है। वाक्या ये है कि दीन का सबसे बड़ा दरवाज़ा हाईलाइट करें, मुझे इस पूरी बुक में यही बात 100% गालिब दिखी है, रज़ा बी क़ज़ा। बस दीन का सबसे बड़ा दरवाज़ा रज़ा बी क़ज़ा है। आसान लफ्ज़ों में कह दूँ, आप अपने रब से कितने राज़ी हैं? जो होता है होने दें, मैं राज़ी, ये भी ठीक वो भी ठीक। अपने तसव्वुर में अपने किसी बच्चे को लाइए जो आपकी हर बात पे के ठीक है अम्मी, ओके माम, ठीक है जो आप कहें, जो आपको अच्छा लगे। आप ज़रा सी गुस्से की भी बात कर दे तो वो कह नहीं आप मेरे ही फ़ायदे के लिए कह रही हैं, कौन रोक सकता है उस बच्चे से आपको प्यार करने से। तो ये तो माँ बच्चे की बात है ना, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल भी नहीं है। कहिए अल्लाह मैं तेरे हर फैसले पर राज़ी हूँ, रदी तो बिल्लाही रब्बन। इससे अल्लाह के फरमा बरदार, इसकी हिदायत पर मसरूर और इसकी इताअत गुजार दाखिल होंगे और इसका कुर्ब हासिल कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन में गनीमत तकसीम की। ये बहुत बड़ी जंग थी तबुक से पहले की जंगों में। इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में भी फरमाया। माले गनीमत तकसीम हुई, अरबों के जो रईस थे, सरदार थे, और न्यू मुस्लिम्स यानी नौ मुस्लिम मक्का वालों की दिल सोजी के लिए, यानी उनके दिलों को नरम करने यानी तालीफ़ कल्ब के लिए उन आपने ज़्यादा माल दिया। और अंसार को ईमान व यकीन और रज़ा व खैर अमीम की जो दौलत हासिल थी, इस पर भरोसा करते हुए आपने इन्हें छोड़ दिया, यानी अपने करीबियों को थोड़ा दिया और नए नए लोगों को ज़्यादा दिया, ये मुराद है। लेकिन असल मकसूद बाज़ अंसारियों पर मुनकशिफ ना हो सका, यानी उनको समझ नहीं, उनको लगा कि अल्लाह के नबी ने नाइंसाफ़ी की है, एक को तो ज़्यादा दिया एक को कम दे दिया, इसलिए फिर थोड़े से नाराज़ हो गए, यानी कबीदा खातिर। कब्दा कहते हैं जिगर को, लिवर को, और दिल में जलने जलाने का जो खून जलता है ना, वो बहुत अहम है जिगर। तो कबीदा खातिर से मुराद ये कि दिल उनका ख़राब हो गया, मुहावरा है। आपने इन्हें जमा फरमाया और मामले की वजाहत की और बताया कि आप इनके साथ हैं, इनसे मोहब्बत रखते हैं, और जिनको ज़्यादा दिया है इसलिए दिया है कि इनके पास यकीन की दौलत कम है। बहुत बड़ी बात है इसके पीछे। देखिए उनको ज़्यादा दिया था अपना बनाने के लिए, ये तो पहले ही अपने थे, उनको ज़्यादा दिया था ताकि उनके दिल में ईमान बढ़ते बढ़ते यकीन पे आ जाए। तो सहाबा के दिलों में तो यकीन पहले ही बहुत था, वो तो पुराने लोग थे, उनको तो इस चीज़ की कोई परवाह भी नहीं थी। तो मकसद थी तालीफ़ कल्ब, और आप जानते हैं कि ज़कात, जिसमें ज़कात दी जा सकती है उसमें एक तालीफ़ कल्ब भी है, यानी ऐसा गैर मुस्लिम जो इस्लाम की तरफ इंक्लाइंड है, आप उसको भी कुछ दे सकते हैं ताकि वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाए। आपने फरमाया, बहुत ही खूबसूरत जुमले हैं, साहबा फूट फूट कर रोए थे इस पे, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि दूसरे लोग तो ऊँट और बकरी लेकर जाएं और तुम अपने घर अल्लाह के रसूल को ले जाओ? यानी उनको तो ऊँटे बकरियाँ जो गनीमत में मिली थी वो बांटती, मैं तो तुम्हारा हूँ, यानी तुम्हें उन चीज़ों में और मेरे में से क्या चूज़ करना है? अंसार असल और करीबी हैं, दूसरे तो इतने करीब नहीं। और आपने फिर अंसार के हक़ में दुआ फरमाई, ए अल्लाह अंसार अब नाए अंसार यानी अंसार के बेटे और इनके बेटों के बेटे यानी पोते नवासे इन पर रहम फरमा। आपने फरमाया, बखुदा अगर लोग एक वादी और घाटी में चलें और अंसार दूसरी वादी और घाटी में चलें तो मैं यकीनन अंसार की वादी और घाटी में चलूँगा। इतने खूबसूरत रिमार्क्स अल्लाह के नबी के अपने उन साथियों के लिए जो बिल्कुल दीन के सफ़र के आगाज़ के साथी थे। आप इसे एक एक लफ्ज़ से वो मोहब्बत टपकती हुई महसूस कर सकते हैं। आपके अल्फाज ने असर किया, अंसार के दिल यकीन और मसरत से भर गए, इन पर सकीनत का नज़ूल हुआ, इन्हें और ज़्यादा रसूल की रज़ा हासिल हुई। इसको कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। आज भी ये असूल कायम है दुनिया के नक्शों में। आप देख लीजिए जिन लोगों ने किसी भी तहरीक में हिस्सा लिया होता है ना, उनको फिर वो चीज़ अपनी जान से भी प्यारी होती है। बात वाले हो सकता है जॉब की खातिर आ जाएं, पैसे मिलें तो आ जाएं, ना मिले तो ना आए, जबकि पहले लोग उसको मिशन की खातिर ले लेते हैं और सहाबा किराम मिशन मोहम्मदी के साथी थे। इसीलिए तो फिर इन पर सकीनत का नज़ूल हुआ, इन्हें और ज़्यादा अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल हुई। और बात यही है, खूबसूरत से जुमले हैं ये सहाबा की शान में कि जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं और आसमानो ज़मीन जितनी वसअत वाली जन्नत का शौक़ रखते हैं। कौन थे ये? उमर बिन हमाम। सूरत आले इमरान में किस्सा आता है जब अल्लाह के नबी ने आयात पढ़ी कि वसारी विला मगफिरतिम, भाग लगाओ दौड़ करो मगफिरत व जन्नत नरदुहा कर दिस समावाती वलर्थ। तो सहाबी पास आए, अल्लाह के नबी जन्नत इतनी प्यारी जी, क्या मैं उसमें जाऊंगा? जी जाएंगे। कहा अच्छा, खजूरों का थैला हाथ में तो एक खाई फिर दूसरी खाई फिर फेंक के कहा कि मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूं, जन्नत मेरा इंतज़ार कर रही है। तो वह जन्नत के शौक रखते रखते मैदान जंग में गए और शहीद हो गए। ये वो लोग थे कि वो इस अजीम नेमत के बदले दुनिया और उसकी आलाइशों को तरजीह नहीं दे सकते। ये आलाइशें क्या हैं दुनिया की? ये खपाइयाँ हैं, ये दुनिया और कमाना, ये जॉब्स हैं, ये अल्लाह के दीन के मुकाबले पे कोई नफ्स की दुनियादारी की चीज़ों को तरजीह देना है। और सच्ची आंख खुलती है अंदर की तो वाकई दुनियादारी आलाइशी लगती है, इल्ला ये कि अल्लाह ज़रूरत पे ज़िंदगियों को गुजार दे। एक अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, आपने इसे कुछ माल दिया, बोला अल्लाह के रसूल इसके लिए ईमान नहीं लाया हूँ। आपने दरियाफ़ फरमाया फिर किस लिए लाए हो? बोला ताकि कोई भूला भटका तीर मेरे हलक में लगे और गुद्दी से निकल जाए, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह में शहादत मिले। अपने ऊपर ले हम, अल्लाह अकबर, अपने ऊपर नहीं तो अपने बच्चों पे लें, सिर्फ इसलिए कोई मुसलमान हो कि मैं शहीद हो जाऊं? अल्लाह के नबी की फिर उस पर बात भी सुन लीजिए। आपने फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हारी आरजू पूरी करेगा। चुनाचे जंग में वो शरीक हुआ, एक तीर लगा जो सीने के पार निकल गया और वो खुश खुश अपने रब से जा मिला। ये है वो जो शुरू में भी बात हुई कि कुछ लोगों के मुंह से बात निकलती बात में है, अल्लाह पूरी पहले करता है। और बहुत सारे सहाबा के जंगी किस्सों में तो ये आम बात है, घर से कह के जाते थे ऐसे शहीद होना है और बिल्कुल वैसे ही शहीद होते थे। तो अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मार्फत इतनी हसीन चीज़ है कि इंसान को कैसे करती है, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा, ये माल व दौलत दुनिया ये लज्जतो पेवंद बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये बुत हैं सिर्फ दुनिया की मोहब्बत के। बंदे मोमिन के दिल में तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह में ईमान की बुलंदियाँ अता कर दे। एक बार आपने माल गनीमत तकसीम किया, बाज़ इन लोगों को जो माल के हरीस थे, दीन और अमानत और बुलंद इकदार के लिहाज से गरीब थे, ज़्यादा दिया और इनके मुकाबले में इनको कम दिया। किन को कम दिया? जो अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ लड़े थे और अपनी जानो माल की कुर्बानियाँ दे रहे थे। इसके बाद आपने तकरीर फरमाई और मामले की वजाहत कर दी कि कुछ लोगों के दिलों में जज़ा व फज़ा और माल की हिरस ज़्यादा है, इनको मैं दिल नरम करने के लिए दे देता हूँ, बस लोगों को छोड़ देता हूँ क्योंकि इनके दिल ईमान और खैर से सरशार हैं। इन्हीं में अमर बिन तगलुब हैं। ये बात सुनकर अमर बिन तगलुब बोले, आपका ये जुमला मेरे लिए दुनिया जहाँ से ज़्यादा कीमती है। आप देखिए कि अपने नबी या लीडर या उस्ताद की ज़ुबान से एक जुमला ऐसा सुन लेना हज़ारों कमेंट्स और कह लीजिए कि खूबसूरत तारीफ़ी बातें सुनने से ज़्यादा खुशी देता है। ये रज़ा जोई और अल्लाह और रसूल की गैर मशरूत इताअत और मोहब्बत थी कि कलमा दुनिया जहाँ से इनकी नज़र में बेहतर ठहरा। अल्लाह के रसूल साहबा कराम से किसी महल, बादशाहत या बाग वगैरह का वादा नहीं करते थे, बल्कि जन्नत का, अल्लाह के अजर व सवाब और खुशनुदी का वादा फरमाते थे। आप फरमाते, जो ऐसा करेगा इसे जन्नत मिलेगी, या वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा, क्योंकि इनकी जिद्दोजहद, इनके जानो माल की कुर्बानियों का बदला आखरत की अबदी नेमते ही हो सकती थी। दुनिया और जो कुछ उसमें है, यानी दुनिया व माफीहा, इनकी अजीम कुर्बानी से क्या निस्बत रखती है? ये तो बहुत सस्ती और घाटे की कीमत होती है। लेकिन ये बात पता हर एक को नहीं लगती, जिसके ऊपर अल्लाह का रहम हो उसी को ये बात समझ आती है। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी की हदीस में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उमरे की इजाज़त लेते हैं तो आपने फरमाया, भाई अपनी दुआओं में हमें न भूलना। आप देख रहे हैं कि ये बात कौन कह रहा है? रसूले खुदा, इमाम मासूम, जिसकी ज़ुबान से हक बात के अलावा कुछ नहीं निकलता, एक अजीम, नफीस और कीमती बात है जिसके बारे में हज़रत उमर बात में फरमाया करते थे। यह ऐसा कलमा था जो मेरे लिए दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर था। यहाँ आपको एहसास होना चाहिए कि जैसे खुद आपसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात कह रहे हैं कि निगाह है इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ान वही यासीन वही तौखा, यानी अल्लाह की नबी की मोहब्बत में थोड़ा सा मुबालगे की हद तक ये अशार है। मुराद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खुद रब को पहचानते थे तो आपके साथी भी रब को पहचानते थे। रब्बे ताला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा इस दर्जे की थी कि इसे बयान नहीं किया जा सकता। गिना हो या फ़क्र यानी दौलतमंदी हो या गुर्बत, जंग हो या सुलह, कुव्वत हो या कमज़ोरी, सेहत हो या बीमारी, शिद्दत हो या फराही, हर हाल में आप राजी व रजा रहते थे। आपने यतीमी का गम उठाया, फ़क्र को झेला कि कभी ख़राब खजूरों से काम चलता और कभी पेट पर पत्थर बांधने की नौबत आ जाती, कभी अपनी ज़रा यहूदी के हाथ गिरवी रखनी पड़ती, मोटी चटाई पर आप सोते जिसका निशान भी जिसमें अथर पर पड़ जाता, तीन तीन दिन घर में चूल्हा न जलता बल्कि दो दो महीने, ये भी आता रिवायतों में, फिर भी कभी शिकवा जुबान पर ना आता। अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो चाहती तो आपको इससे बेहतर सामान्य ज़िंदगी देती, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हों और महल्लात मुहैया कर देते, यानी अल्लाह ताला चाहते तो अपने नबी को दुनिया में भी जन्नत नुमा घर दे देते। लेकिन आपने इसको पसंद नहीं किया। आप इस वक्त भी राजी पर रजा थे जब मैदान जंग में निकलना पड़ा, आप अकेले एक तरफ और पूरी दुनिया मुकाबले में खड़ी थी। अपने लाओ लश्करों, कील कांटों और इशरत के सामानों और इस्तिकबार के साथ, यानी तकब्बुर, आपके खिलाफ सफारा थी। जब आपके प्यारे चचा और प्यारी बीवी दोनों वफात पा गए, आमुल हुजन आ गया यानी गम का साल, आपकी तकजीब और ईजा रसानी में शिद्दत आ गई, इस वक्त भी राजी थे। अब बताइए, सीरत का ये पहलू कितने लोगों को पता है? जब आपकी इज्जत को चोट पहुंचाई गई, आपको साहिर, कज़्ज़ाब, काहिन, मजनू और शायर कहा गया, आपको इस पर भी कोई शिकवा ना हुआ। जब मक्का से आपको निकाल दिया गया, जो आपको बेहद महबूब था, जहाँ आपका लड़कपन और आपकी नौजवानी गुजरी थी, हिजरत करते वक्त आप इसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखते, आंसू जारी थे और फरमा रहे थे कि ऐ मक्का, तू ज़मीन में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तेरे रहने वाले मुझे यहाँ से ना निकालते तो मैं ना निकलता। अब अगर आपने अल्लाह के लिए कोई जगह छोड़ी हो तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब आप ताइफ गए, इन बदबख्तों को दीन की दावत दी तो उन्होंने बुरा जवाब दिया, पत्थर फेंक के आपके पैरों से खून बहने लगा, लेकिन आप राजी व रजा रहे। मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, आपका पीछा किया गया, रास्ते बंद किए गए, मैदाने उहद में आप जख्मी हुए और आपके दंदान मुबारक यानी दांत टूटे, प्यारे चचा का जालिमाना कत्ल हुआ यानी हज़रत हमजा रदी अल्लाह अन्हो, बहुत से सहाबी शहीद हुए और लश्कर इस्लाम शिकस्त से दो चार हुआ, लेकिन आपकी शुजात काबिले दीद थी कि फरमाए, लोगों सफ़े बांधो, आओ अल्लाह की हमदो सना करें। मुनाफिकीन यहूद और मुशरिकीन सब ने आपके खिलाफ गठजोड़ किया, लेकिन आप चट्टान की तरह अपने मौक़िफ़ पर जमे रहे। इसका बदला था कि अल्लाह ने फरमाया, तेरा रबन करीब ही तुझको वो देगा जिससे तुम राज़ी हो जाओगे। फसौफ़ यातिल्लाह, अल्लाह देगा क्या जिससे तुम राज़ी होगे। सूरह दोहा की आयत नंबर 5 है। वला सौफ युती का रब्बुका फतौरता। तो क्या पता चला, मैं तो सीरत पढ़ाते हुए जिस तरह खुशी महसूस करती हूँ उसी तरह इस टॉपिक को पढ़ते हुए महसूस किया। नेक्स्ट थिंग क्या है, वादी नखला में एक एक टॉपिक इतना खूबसूरत है कि हम उसको अगर देखते रहें तो हमारी अपनी ज़िंदगी में इससे बहुत कुछ खैर आ जाए। आज क्यों हम नबी सल्लम की तरह जम नहीं पाते, मुश्किलात से पहले ही पीछे होते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम तो मुश्किलात से पहले ही भाग जाते हैं, उनकी तो मुश्किलात पड़ी होती थी तो वो पीछे नहीं होते थे। तो बहुत सारे हमारे एक्ट जो हैं वो हमें इस चीज़ की सच्चाई का यकीन दिलाते हैं। अब अल्लाह के नबी के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसको आप वादी नखला में कह सकते हैं। आइए इसको इंजॉय करते हैं। और मेरा फेवरेट टॉपिक शुरू हो गया है वाक़यात सीरत में से, और यही मेरे आपके लिए बेहतरीन उसवा हसन है। ताइफ में क्या हुआ, यानी जब अल्लाह के नबी दावत देते हुए मक्का से ताइफ गए, जहां आप दावत दीन के लिए तशरीफ़ ले गए थे, बदबख्तों ने आपको इंतहाई हद तक अजियतें पहुंचाई, पत्थर मारे, बदमाश किस्म के लड़के पीछे लगा दिए, तमस्खुर किया गया। कौन सी तकलीफ थी जो ना दी गई हो। आपकी आंखें रोईं, दिल गमगीन हुआ, कदमों से खून जारी हुआ। किस की पनाह लें, कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें, किससे मदद मांगें। आप सबसे कटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, व तबत्तल इलैहि तबतीला पे अमल करते हुए। जो कवी है, जो कहार है, अजीज़ है, हामी व नासिर है, आपने किबला रुख होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलई का दाफ़ कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास अंतर हमुर्राहमीन व रब्बुल मुस्तदअफीन व अंतर रब्बी इला मन तकिलुनी इला करीबिन यतजहमुनी औ इला अदुव्विन मल्लकतहु अम्री इल्लम यकुम बिका अलैया गज़बुन फला उबाली गैरा नाफियतुका हिया औसौली आऊज़ु बिनूरि वजहिकल लज़ी अशरकत लहु जुलुमात वसलुह अलैहि अमरु दुनिया वल आखिरा अय यनज़िल बी गदबुक औ यहिल्ल बी सखतुक लकल उत्बा हत्ता तर्दा वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिक। हो सकता है अरबी की वजह से कुछ साथियों को समझ ना आया हो, मैं इसका उर्दू तर्जमा करती हूँ, लेकिन बात यह है कि इसको दुआए ताइफ जो कहा जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जिनको हम देखते हैं। इसको किसी ने शेरी सूरत में कहा है, बड़ी प्यारी पोइम्स ही है। शायर कहते हैं कि तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंजर याद आता है, कि जख्मों से भरा जिसमें पैगंबर याद आता है। रसूलुल्लाह पर लोगों ने पत्थर इस कदर मारे, लहू बहने लगा जख्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए प्यारे। हदे नखला में आ पहुँचे बहाले खस्ता गमगी, वहाँ चश्मे पे आकर जख्म धोए पट्टियाँ बांधी। बस चश्मे तर नबी ने हाथ फैलाकर दुआ मांगी, अल्लाह का फजल मांगा, खुए तस्लीमो रज़ा मांगी। दुआ मांगी, इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इन्हें नूरे बसीरत दे, इन्हें नूरे हिदायत दे। इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, खुदाया फूल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी का सफ़र ताइफ अपनी जगह एक दुख और गम को सहारने और उसको बर्दाश्त करने की एक मिसाल है। तो हमने इसमें अल्लाह के नबी का तबलीग के लिए ताइफ की तरफ जाना और उधर से अच्छा रिस्पांस ना मिलना और वापसी में वादी नखला में आपका रुकना और जिन्नात का वहाँ आना और फिर आपको अपनी बस्तियों में ले जाना और जिन्नों की पूरी बस्ती मान ले आई। क्या पता चला कि पुकारने वाले का कुछ नहीं जाता, नहीं नसीब में, तो कोई फ़ायदा नहीं लेगा, कोई दूसरा आएगा और वो फ़ायदा लेके चला जाएगा। ये वाक़या तो इसी की यादगार है। तो क्या देखा कि ताइफ में तबलीग के बदले में आपकी तकजीब हुई, दावत का इनकार किया गया, तमस्खुर और अज़ियत रसानी की गई, जिस्मानी तशद्दुद भी हुआ और शदीद बेसरो सामानी भी हुई। ज़रा सा अपने ऊपर लेकर देखे, अगर हमारे साथ दीन के नाम पर या दर्स देने गए और आगे से ये सलूक किया गया तो हम दोबारा जाएंगे? नहीं। अल्लाह के नबी की ये दुआ जो आपने उस मौके पे फरमाई, इसको दुआए मुस्तदफीन कहते हैं। और अभी इसका हम तर्जमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि खून टपक रहा है। मुझे तो इस दुआ से इतना प्यार है, ऐसे लगता है कि इंसान कभी किसी भी ऐसे हालात में घिर जाए, दिल टूट जाए, शिकस्ता होने लगे इंसान का हौसला, इस दुआ को पढ़ लीजिए। क्योंकि इसमें आपने कहा कि अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की तुझसे शिकायत करता हूँ, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं फिर मुझे भी कोई परवाह नहीं। यानी बस ये बता दे कि ताइफ वालों ने जो मेरे साथ बदसलूकी की है, ये मेरे किसी गुनाह की सज़ा तो नहीं? फिर मैं अफसोस करूँगा, लेकिन अगर तू इसमें खुश, नाराज़ कोई नहीं, तू खुश है, तेरे रस्ते की आजमाइश है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और पहाड़ों के फरिश्ते ने मदद पेश की कि मैं दोनों पहाड़ों के बीच में पूरी बस्ती को कुचल दूँ, लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी पुश से ऐसे लोग पैदा करेगा जो उसकी इबादत करेंगे और किसी को इसका शरीक ना ठहराएंगे। और वादी नखला में जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने चंद रोज़ मुकाम नखला में क्याम फरमाया। दौरान क्याम एक रात नमाज तहज्जुद में आपने पहली रकत में सूरत रहमान और दूसरी में सूरत जिन तिलावत फरमाई। 7 जिन्नों का इधर से गुजर हुआ और वह अल्लाह के नबी की किरत सुनकर ठहर गए और गौर से सुनने लगे। और रिवायात में आता है कि जिन नमाज के बाद जाहिर हुए, आपने ने ईमान की दावत दी और उन्होंने इसको कबूल किया। आइए ज़रा दुआए मुस्तदफीन का तर्जुमा देखकर ज़रा अपने गमों और दुखों को भुलाने की कोशिश करते हैं। जहन में अल्लाह के नबी को लाइए। पाँव में खून की वजह से जूते चिपके हुए हैं और आज भी अगर अल्लाह आपको मौका दे दे मक्का से ताइफ जाने का, गालिबन 60-70 किलोमीटर दूर है, तो तकरीबन 1 घंटा लग जाता है आज भी गाड़ियों में, इससे भी ज़्यादा लगता है कभी। आप क्या फरमाते हैं? इस कदर मगमूम और रंजीदा थे, फरमाए अल्लाहुम इलैका अश्कुदा फ़कुव्वती वक़िल्लत हीलती वहवानी आलन्नास। परवरदिगार, मैं तुझसे ही अपनी कमज़ोरी और बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। ताइफ वालों ने प्यारे नबी की कदर ना की, और किसको कहा? उनको कहा, ओ बेकदरो, ओ ना शुक्रो? नहीं, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुदा फ़कुव्वती। तो ये पैगंबराना अखलाक है कि अगर किसी से आपको दुख पहुँचे तो रब के सामने शिकवा कर ले, लेकिन उस बंदे को शर्मिंदा ना करे। और या रहमुर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तदअफीन, तू तो कमज़ोरों का रब है। वानता रब्बी, तू ही मेरा रब है। इला मन तकिलनी, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के, गैर के बेगाने के जो मेरे साथ सख्ती से पेश आएगा, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया? यानी अल्लाह, मेरा मामला दुश्मनों के हवाले ना करना, तू मेरा मामला खुद देख। और अगर तुझ पर मेरा गज़ब नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं, फला उबाली, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गईं और जिस पर दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त हुए, कि तू मुझ पर अपना गज़ब नाजिल करे या तेरा एताब मुझ पर वारित हो। तेरी रज़ा मतलूब है यहाँ तक कि तू खुश हो जाए तौरदा, और तेरे बग़ैर कोई ज़ोर और ताकत नहीं। तो क्या सीखा? अल्लाह ना करे कभी हम इतने बेबस किए जाएं, आज तक तो ना हुए क्योंकि ईमान ही नहीं है वो। अल्लाह के नबी इतना कुछ सह कर भी खड़े रहे, हम तो इससे बहुत पहले भाग जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी आप देखिए कि हमारे ईमान अल्लाह के नबी के ईमान के मुकाबले में एक, जिसको आप कह सकते हैं कि छोटी सी हैसियत नहीं रखते। हम तो किसी आजमाइश में पड़ने से पहले ही परेशान हो जाते हैं, आजमाइश में पड़ गए तो पता नहीं क्या होगा। अल्लाह के नबी का ये अखलाक आपको मुझे क्या सिखाता है कि दीन के रास्ते में कोई मुश्किलात आएँ तो खुश हों, आजमाए जाएं तो खुश हों। सहाबे कराम के बारे में आता है कि अगर 3 दिन से ज़ायद अगर उन पर कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई छोटा सा गम ना आता तो कहते तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया, यानी वो तुम्हारी तरफ नज़र ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है और अल्लाह बंदे से प्यार करता है तो उसको आजमाता है। जैसे हम अपने प्यारों को आजमाते हैं, चले हम आपके पास आए, हमें खाना खिलाएं, आप आइए हम आपके लिए खाना बनाते हैं, ये मोहब्बत की आजमाइशें हैं। अल्लाह के रास्ते में ये आजमाइशें इसी तरह आती हैं, अल्लाह हर एक को इसमें डालता भी नहीं है। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने गमों, दुखों और तकलीफ़ों को इसमें लाएँ। और क्या अल्लाह के नबी को कोई तायब से मैसेज आया था कि आप आइए, खत डाला, कोई इनविटेशन थी, कोई बहुत आपको टिकट ऑफर किए गए थे? क्यों गए ताइफ? मक्का छोटा था, सारा मक्का नहीं भुगत लिया? लेकिन अल्लाह वाले कभी ये नहीं सोचते कि हमें कोई इज्जत मिले, कोई प्रोटोकॉल मिले, कोई बुलाए, कोई हमारे खर्चे उठाए, फिर हम जाएंगे। ये था वो मिशन मोहम्मदी जिसको आज आपको और मैंने लेकर चलना है। हम सब मुकल्लफ है इस बात के इस दीन को ताइफ तक ले जाकर अल्लाह के नबी ने ये तक हमें सिखा दिया कि अपनी पहुंच से भी आगे जाओ। हम तो गाड़ियों में, स्कूटरों में, रिक्शे, टैक्सियां, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे हौसले अपने नबी जैसे बना दे। जब कारे नबूवत है तो तरीका भी तो नबूवत वाला हो। और सहाबा कराम के किस्से पढ़ते हुए तो वाकई दामन में झांकने को दिल करता है। आइए कुछ और किस्से देखते हैं इनके। अगला टॉपिक क्या है कि सहाबा कराम को इनाम से नवाजा गया। कैसे? रदी अल्लाह अन्हु व रदुअन। और सहाबा की बात और सूरत फतह न खुले, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह मोमिनीन से राज़ी हुआ। जब वो तुझसे बैठ कर रहे थे दरख्त के नीचे, इनके दिलों में जो बात है इसे अल्लाह ने जान लिया और इन पर सकीनत नाजिल की, इनको करीबी फतह दी। सूरह फतह की आयत नंबर 18 आपको मुझे बताती है कि सहाबा कराम नहत्ते खाली हाथ जंग करने के लिए तैयार हो गए थे, हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए। ये तो अलग बात है, उनको तो पता भी नहीं था कि इसकी नौबत नहीं आएगी। तो बस दफ़ा अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करके सिर्फ चेक करता है कि ये बंदा कहता क्या है। करवाना अल्लाह ने भी कोई नहीं होता वो काम, लेकिन सिर्फ बंदे का ईमान और उसका हौसला दिखा दिया जाता है ऐसे वक्तों में। और यही थी वो वजह यानी गायत जिसकी तमन्ना मोमिनीन करते हैं, जिसे सादिकीन चाहते हैं, कामयाबों कामरान इसकी हिरस करते हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह की रज़ा से बेहतर, बरतर और कीमती क्या चीज़ हो सकती है। ये तो सबसे बड़ा और बुलंद मकसद है। कोई अतिया यानी तोहफा, गिफ्ट भी इसकी बराबरी नहीं करता। इस आयत में रज़ा की खबर है रदी अल्लाहु अन्हुम, और दूसरी में मग़फ़रत की, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया टू में फतह में, लियग़फ़िरल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक औ तअख़्खर, यानी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत तौबा आयत 43 में क्या फरमाया, और इसी तरह सूरत तौबा 117 क्या फरमाया, तौबा कि अल्लाह ने नबी मुहाजरीन और अंसार की तौबा कबूल फरमा ली। और एक जगह इसे अफ कहा गया, यानी अल्लाह तुम्हारा भला करे इन्हें क्यों इजाज़त दे दी। बहरहाल यहाँ जो कहा है इससे खुशनूदी रब साबित हो गई, मुहक्किक हो गई, क्योंकि उन्होंने दरख्त के नीचे बैत की और अल्लाह को दिल का हाल मालूम है। अल्लाह की रज़ा की खातिर जान और रूह की कुर्बानी देने की बैत कर रहे थे, अपने वजूदो बका को मिटाने की बैत कर चुके थे कि इनकी मौत से पैगाम हक को ज़िंदगी मिले। इसको हाईलाइट कर ले, कुछ लोगों की मौत हक़ का पैगाम देने का ज़रिया बनती है, उसको ज़िंदगी मिलती है। हम अपनी जान बचाकर हक़ को अगर मुर्दा कर देंगे तो अल्लाह को कभी जवाब नहीं दे सकेंगे। इनके कत्ल से मिल्लत इस्लाम को बका और इनके चले जाने से पैमाने वफा पूरा होगा। यानी ऐसे लोग बनिए कि ज़िंदा तो अल्लाह से जो वादे करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के, उसको अल्लाह ताला पूरा करवाता है हमसे। और अगर आप चले गए तो इस्लाम बाकी होगा आपके जाने से। इनके दिल में ईमान व यकीन, इखलास व इज़ान और सिदक व अमानत के जौहरे ताबदार थे। वो थके जागे भूखे रहे, प्यास झेली, हर तरह की मुसीबत, दरर, तंगी, मशक्क़त और नुकसान बर्दाश्त किया, इसीलिए तो अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। सूरह तौबा में तो पूरी आयत है कि वो तो चले भी नहीं, अभी उन्होंने भूख प्यास तो सही नहीं, और घर बैठे उनको अल्लाह के नबी वाला अजर कैसे मिल गया, वो लोग जो तबूक के सफ़र से पीछे रहे। तो अल्लाह की रज़ा कुछ जितोजहद के बाद मिलती है। इन्हें घर बार दयारों अमवाल और अहलो आला छोड़ देने पड़े। फराक यानी तन्हाई और जुदाई की आग में जले, अजनबियत का जायका चखा, सफ़र की थकान, गर्दोगुबार और अजनबियत का एहसास हुआ। घरों से भगाए गए, माँ बाप बच्चों से दूर हुए, मुसीबत में डाले गए, तभी तो अल्लाह इनसे राजी हुआ। आज ज़रा सा इधर उधर कुछ मामले चले जाएं, लोग फौरन सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं कि क्या अब ये दीन में हम ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर शौहर 4 महीने चले गए तबलीग पे तो ये कोई दीन है कि बच्चे तो औरतें तो घर में रह गए। देखिए, ये बातें पूछने कहने की नहीं होती, ये करने की होती हैं। लिहाजा ऐसे मुजाहिदीन मिल्लत के फर्जंदों और दीन के मवाफिकीन का बदला, यानी जो इतने बड़े हौसले लेकर निकले, इतने बड़े गोल्स उनकी नज़रों में, क्या उनको बदले में गनीमत में मिले हुए ऊँट चाहिए? गाय लेने जाता है बंदा जंग में, बैल लेता है बकरी और सोना चांदी या गिनती के चंद सिक्के, या दुश्मनों की ज़मीन बागात और शानदार मोहल्लात लेगा? नहीं, एक सच्चा दाई दीन, एक सच्चा दीन का अंसार या अंसारुल्ला इनमें से किसी चीज़ पे नज़र नहीं रखता। इनका मुआवजा तो अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी ही हो सकती है जिससे इनके दिल ठंडे हों। और ये इतना बड़ा क्रेडिट है, इतना बड़ा क्रेडिट है कि बंदा इस पे सर रख दे।